लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है स्लोवाकिया में संत पापा फ्रांसिस की प्रेरितिक यात्रा पर हमारी अंतिम रिपोर्ट। संत पापा फ्रांसिस ने मंगलवार को कहा कि क्रूस का दुरुपयोग राजनैतिक प्रतीकों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। विजयी होने के लिए अनवरत प्रयासरत ख्रिस्तियों को भी उन्होंने चेतावनी दी तथा पक्षपातपूर्ण लक्ष्यों के लिए धर्म के दुरुपयोग की कटु आलोचना की। सार्वभौमिक कैथोलिक कलीसिया के परम धर्मगुरु संत पापा फ्रांसिस रविवार 12 सितंबर को आरंभ हंगरी और स्लोवाकिया की अपनी यात्रा के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। यह प्रेरितिक यात्रा संत पापा फ्रांसिस की 34वीं विदेश यात्रा थी। मंगलवार को संत पापा फ्रांसिस ने ब्रातिस्लावा के, कोसिके तथा प्रेसव नगरों के लिए प्रस्थान किया था। पूर्वी स्लोवाकिया के प्रेसव नगर में संत पापा ने बीजेंटाइन रीति की धर्म विधि की अध्यक्षता कर पवित्र क्रूस का यथार्थ मर्म समझाया। धर्म विधि में एकत्र लगभग 30,000 श्रद्धालुओं को संबोधित कर उन्होंने ख्रिस्तीय पहचान और ख्रिस्तीय अस्मिता पर अपना प्रवचन केंद्रित रखा तथा इस तथ्य पर खेद व्यक्त किया कि ख्रिस्तियों द्वारा क्रूसों और क्रूस की प्रतिमाओं का उपयोग प्रायः सतही रूप से किया जा रहा था। संत पापा फ्रांसिस ने कहा कि क्रूस और क्रूस की प्रतिमाओं को अपने घरों की दीवारों पर टांग देना ही पर्याप्त नहीं होता, अपितु इसके यथार्थ मर्म को समझकर क्रूसित यीशु के प्रति अपने मन के द्वारों को खुला रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा, क्रूस को केवल पूजा का लक्ष्य न बनाया जाए बल्कि क्रूसित यीशु में समाहित पीड़ितों के प्रति उदार रहा जाए। राजनीतिक प्रतीक अथवा सामाजिक स्थिति के प्रदर्शन हेतु क्रूस के दुरुपयोग के प्रति भी उन्होंने चेतावनी दी और कहा कि क्रूस लहराया जाने वाला कोई झंडा नहीं है, अपितु यह नए तरीके से जीने का शुद्ध स्रोत है। गौरतलब है कि यूरोप की कई राजनीतिक पार्टियां पार्टी के प्रतीक रूप में क्रूस का उपयोग कर रही हैं। संत पापा की उक्त चेतावनी जाहिरा तौर पर इन्हीं राजनीतिक पार्टियों के लिए थी जो क्रूस का प्रदर्शन तो करते हैं किंतु क्रूस के वास्तविक अर्थ को भुलाकर निर्धनों और हाशिए पर जीवन यापन करने वालों को दरकिनार कर देते हैं। मंगलवार को ही संत पापा फ्रांसिस ने स्लोवाकिया के दरिद्र और निर्धन खानाबदोश समुदाय की भेंट की तथा उनके विरुद्ध पूर्व धारणाओं और भेदभाव की निंदा की। उन्होंने कहा कि संपूर्ण रोमानी समुदाय को खताई में डालना सरासर गलत है। फिर मंगलवार देर संध्या प्रेरितिक यात्राओं के दौरान राष्ट्र विशेष के युवाओं से मुलाकात की परंपरा को जारी रखते हुए संत पापा फ्रांसिस कोसिके शहर के लोकोमोटिवा स्टेडियम पधारे। अपनी पापा मोबिल गाड़ी से दर्शन देते हुए वे स्लोवाकिया के लगभग 20,000 युवाओं के सागर के बीच से होकर गुजरे। युवाओं ने वैटिकन और स्लोवाकिया के ध्वज फहराकर तालियों, जय गीतों और जय नारों से अपने बीच प्रतीक्षित मेहमान का भव्य स्वागत किया। युवाओं से संत पापा फ्रांसिस ने कहा कि प्यार जीवन का सबसे महान सपना है। प्यार के द्वारा ही आप अपने जीवन को एक सुंदर उपहार बनाएं।
अपनी प्रेरितिक यात्रा के तीसरे दिन संत पापा फ्रांसिस का अंतिम पड़ाव कोशिजे शहर के लोकोमोटिवा स्टेडियम में युवाओं से मुलाकात करना था। इसी स्टेडियम में 2018 में अन्ना कोले सारोवा को धन्य घोषित किया गया था। संत पापा फ्रांसिस ने तीन प्रश्नों का उत्तर देते हुए शुरुआत की। जो उनसे उपस्थित युवाओं द्वारा पूछे गए थे। दो लोगों के बीच प्रेम के बारे में पीटर और जुस्का के प्रश्न का उत्तर देते हुए संत पापा ने कहा कि जीवन में सभी महान चीजों की तरह प्रेम शानदार है, लेकिन आसान नहीं है। यह हमारा सबसे बड़ा सपना है, हालांकि इसे व्याख्या करना आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि सही तरीका है नई आंखों से देखना, ऐसी आंखें जो दिखावे में नहीं आती और जो प्यार को तुच्छ नहीं बनाती। संत पापा ने कहा, क्योंकि प्रेम केवल एक अनुभूति या भावना नहीं है, यह निष्ठा, उपहार और जिम्मेदारी है। संत पापा ने कहा, हमें यहाँ सिर्फ यूं ही जीवन बिताने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन में कुछ हासिल करने के लिए दिया गया है। उन्होंने युवाओं को साहसी बनने और निडर होकर सपने देखने का आग्रह किया। संत पापा ने युवाओं को एक और सलाह दी कि वे प्यार को फलदायी होने के लिए अपनी जड़ों को ना भूलें, विशेषकर अपने बुजुर्गों को। आज बिना जड़ के बड़े होने का खतरा है, क्योंकि हमें लगता है कि हमें हमेशा चलते रहना है, जल्दी में सब कुछ करना है। इसके बजाय उन्होंने समझाया कि उन्हें हमेशा दूसरों के लिए खुला रहना चाहिए। फिर पेट्रा के प्रश्न का उत्तर देते हुए कि कैसे युवा लोग ईश्वर की दया के मार्ग में बाधाओं को दूर कर सकते हैं, संत पापा ने कहा कि यह निर्भर करता है कि हम चीजों को कैसे देखते हैं और वास्तव में क्या मायने रखता है, यह देखने का नजरिया है। संत पापा ने वहां उपस्थित युवाओं से एक प्रश्न किया, जब आप पाप स्वीकार करने के लिए जाते हैं तो आप क्या सोचते हैं? मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आपका उत्तर हमारे पाप होगा, लेकिन पाप वास्तव में पाप स्वीकार का केंद्र नहीं है। हमारे पिता जो सब कुछ माफ कर देते हैं केंद्र में है। संत पापा ने कहा, हम दंडित या अपमानित होने के लिए पाप स्वीकार करने नहीं जाते, लेकिन बच्चों के समान पिता की प्यारी बाहों में उसका प्रेम पाने के लिए जाते हैं। संत पापा ने कहा, मैं आपको एक छोटी सी सलाह दूंगा, प्रत्येक पाप स्वीकार संस्कार ग्रहण करने के बाद आपको मिली क्षमा को याद करने के लिए कुछ समय जरूर बिताएं। अंत में संत पापा फ्रांसिस ने पीटर और लेनका को संबोधित किया, जिन्होंने प्रश्न किया था कि कैसे युवा लोगों को क्रूस को गले लगाने से नहीं डरने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। संत पापा ने कहा, गले लगाने से हमें डर पर काबू पाने में मदद मिलती है। जब भी कोई हमें गले लगाता है तो हम अपने आप में और जीवन में विश्वास हासिल करते हैं। तो आइए हम खुद को यीशु द्वारा गले लगाने की अनुमति दें। यीशु के साथ क्रूस को गले लगाने से यीशु की खुशी मिलती है। अंत में संत पापा ने कहा, वही खुशी मैं आप सबके लिए चाहता हूँ।
हंगरी और स्लोवाकिया में चार दिवसीय प्रेरितिक यात्रा के अंतिम चरण में बुधवार को संत पापा फ्रांसिस ने ब्रातिस्लावा स्थित परम धर्म पीठीय प्रेरितिक राजदूतावास के धर्माधिकारियों और कर्मचारियों से विदा ली तथा लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सास्तिन शहर के लिए प्रस्थान किया, जहां दुखों की मां मरियम को समर्पित महागिरजा घर में संत पापा फ्रांसिस ने स्लोवाकिया के धर्माध्यक्षों के साथ प्रार्थनाएं अर्पित की।
धर्माध्यक्षों के साथ संत पापा ने माता मरियम से इस प्रकार प्रार्थना की, हे सात दुखों की हमारी माता मरियम, हम यहाँ आपकी उपस्थिति में भाइयों के रूप में एकत्रित हैं। हम प्रभु के करुणामय प्रेम के लिए आभारी हैं और आप यहाँ हमारे साथ हैं, जिस तरह आप प्रेरितों के साथ ऊपरी कमरे में थीं। कलीसिया की माता, दुखियों की दिलासा, बड़े भरोसे के साथ हम आपके पास आते हैं। हमारी प्रेरिताई के आनंद और संघर्ष के साथ स्नेह से हमारी ओर नजर डालिए और अपनी बाहों को हमारा आलिंगन करने के लिए खोलिए। हे प्रेरितों की रानी, पापियों की शरण, आप हमारी मानवीय कमजोरी, हमारी आध्यात्मिक पतन को जानती हैं। एकाकीपन एवं परित्याग के सामने अपने कोमल स्पर्श से हमारे घावों को चंगा कीजिए। हे ईश्वर की माता, हमारी माता, हम आपको अपना जीवन और अपना देश चढ़ाते हैं। हम अपने धर्मदक्ष एकता को तुझे चढ़ाते हैं। हमारे लिए कृपा की याचना कीजिए, ताकि हम निष्ठापूर्वक हर एक दिन उसका अभ्यास कर सकें। शब्द जिसको आपके पुत्र ने सिखलाया है, शब्द जो उनमें और उनके साथ है, अब हम उसे ईश्वर हमारे पिता को अर्पित करते हैं। हे ईश्वर, आपने अपनी कलीसिया को बुलाया है कि वह ख्रिस्त के दुख भोग पर चिंतन करने हेतु धन्या कुंवारी मरियम का अनुसरण करे। उनकी मध्यस्थता द्वारा हमें कृपा दे कि हम उनके इकलौते पुत्र के अधिक अनुरूप बन सकें और उनकी कृपा को पूर्णता से ग्रहण कर सकें, जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमेन।
हंगरी और स्लोवाकिया में संत पापा फ्रांसिस की 4 दिवसीय प्रेरित यात्रा बुधवार को अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची, जब संत पापा तथा स्लोवाकिया के विश्वासियों ने सास्तिन नगर स्थित मरियम तीर्थ पर अपनी संरक्षिका दुखों की मां मरियम का समारोह मनाया। यह किसी से छिपा नहीं है कि संत पापा फ्रांसिस को पवित्र कुंवारी मरियम की भक्ति से विशेष लगाव है। इसीलिए अपनी सभी प्रेरित यात्राओं से पूर्व तथा यात्राओं के उपरांत वे रोम के मरियम महागिरजाघर की भेंट कर सालुस पॉपुली रोमानी शीर्षक से सुसज्जित मरियम की प्रतिमा के आगे घुटने टेक कर माँ मरियम से ममतामयी संरक्षण की याचना करते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से दुखों की माता मरियम को समर्पित सास्तिन के मरियम तीर्थ की स्थापना सन 1564 ईस्वी में हुई थी। किंवदंती है कि उस युग का एक स्थानीय सामंत अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया करता था। बेगम अंजेलिका बाकिट्स नाम से पहचानी जाने वाली पीड़ित महिला वर्षों मां मरियम से विनती करती रही थी कि उसके पति का मन परिवर्तन हो जाए तथा वह दुर्व्यवहार का सिलसिला बंद कर दे। एक दिन अपने रथ पर सवार पति और पत्नी में किसी बात पर बहस चल गई और दुष्ट पति ने पत्नी अंजेलिका को रथ से बाहर फेंक डाला। उसी दिन अंजेलिका ने मां मरियम से प्रतिज्ञा की कि यदि उसका पति सुधर जाएगा तो वह उनकी एक प्रतिमा को स्थापित कर देगी। इस घटना के तुरंत बाद चमत्कारी ढंग से दुष्ट पति एक भले व्यक्ति में परिणित हो गया तथा उसने पत्नी अंजेलिका से अपने दुर्व्यवहारों के लिए क्षमा याचना की। जिस स्थल पर पत्नी को पति ने रथ से बाहर फेंका था उसी स्थल पर मरियम की एक प्रतिमा स्थापित कर दी गई तथा शनई शनई यह एक लोकप्रिय मरियम तीर्थ बन गया। स्लोवाकिया के सास्तिन में दुखों की मां को समर्पित मरियम महागिरजाघर आज स्लोवाकिया का एक विख्यात मरियम तीर्थ है, जहां न केवल स्लोवाकिया और यूरोप से बल्कि विश्व के कई देशों से तीर्थयात्री आराधना अर्चना के लिए पहुंचते हैं। महारानी मरिया तेरेसा तथा उनके पति लोरेन के स्टीफन सम्राट फ्रांसिस प्रथम की उपस्थिति में मरियम गिरजाघर का अनुष्ठान संपन्न हुआ था। सन 1964 ईस्वी में संत पापा पॉल षष्ठम द्वारा इस गिरजाघर को महागिरजाघर का दर्जा प्रदान किया गया था। सास्तिन के मीडिया मैनेजर मीरोस्लाव जानक ने वैटिकन न्यूज को बताया कि प्रतिवर्ष लगभग 2 लाख तीर्थयात्री देश विदेश से सास्तिन के मरियम तीर्थ पर श्रद्धार्पण हेतु पहुंचते हैं। संत पापा फ्रांसिस की भेंट के बारे में मीडिया मैनेजर जानक ने कहा, संत पापा को स्लोवाकिया और सास्तिन में देखना एक महान गौरव का विषय है। यह घटना ऐसी है जो पीढ़ी के अंतराल में एक बार होती है। तथापि उन्होंने इस तथ्य को रेखांकित किया कि संत पापा फ्रांसिस की यात्रा स्लोवाकिया के लिए एक अत्यधिक कठिन काल में हो रही थी। उन्होंने कहा, स्लोवाकिया एक बहुत ही मनोरम और आश्चर्यपूर्ण देश है। यहाँ सुखद जीवन के लिए सभी परिस्थितियां मौजूद हैं, किंतु इसके बावजूद यदि आज प्रभु येसु स्वयं स्लोवाकिया आए तो वे स्लोवाकिया को एकता में सूत्रबद्ध देश नहीं पाएंगे। श्री जानक ने कहा कि विगत 2 वर्षों से कोविड महामारी की वजह से राष्ट्र और अधिक विभाजित हो गया है तथा कठिनाइयां ऊपरी स्थल पर आ गई हैं। उन्होंने कहा कि वे मां मरियम से प्रार्थना करते हैं तथा उम्मीद करते हैं कि स्लोवाकिया में संत पापा फ्रांसिस की उपस्थिति स्लोवाकिया के लोगों को एक दूसरे के प्रति एकात्मता और एकता के लिए प्रेरित करेगी।
संत पापा फ्रांसिस ने स्लोवाकिया की अपनी प्रेरितिक यात्रा के अंतिम दिन सास्तिन के मरियम 7 दुखों की माता तीर्थ स्थल पर ख्रिस्त्याग अर्पित किया। संत पापा ने अपने प्रवचन में कहा कि यरूशलेम के मंदिर में मरियम यीशु को बुजुर्ग सिमियोन को देती है, जो उन्हें अपनी बाहों में लेकर इस बात की घोषणा करते हैं, मुक्तिदाता इसराइल की मुक्ति हेतु भेजा गया है। यहाँ हम मरियम को उसी रूप में पाते हैं जो वे सचमुच में हैं, एक माता जो अपने बेटे यीशु को हमारे लिए देती हैं। यही कारण है कि हम उन्हें प्रेम करते और उनकी आराधना करते हैं। षष्ठिन के इस राष्ट्रीय तीर्थ स्थल में स्लोवाकी अपने विश्वास और भक्ति के साथ आते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि मरियम उनके लिए यीशु को लाती हैं। सुसमाचार के प्रकाश में हम मरियम हमारे विश्वास के आदर्श पर चिंतन कर सकते हैं। हम विश्वास के तीन आयाम, यात्रा, भविष्यवाणी और करुणा पर चिंतन कर सकते हैं।
La fede di Maria è una fede che si mette in cammino.
मरियम अपने विश्वास के कारण एक यात्रा हेतु निकलती हैं। वह अपने द्वार को खोलते हुए बाहर निकलने को प्रेरित होती हैं। मानो ईश्वर प्रेम के कारण अपने लोगों के संग अपने को पूर्ण रूपेण साझा करने में अति उत्सुक हों। यही कारण है वह अपने दैनिक जीवन की सुविधाजनक दिनचर्या को छोड़कर अनजान मार्ग का चुनाव करती हैं, जो विश्वास की जोखिम को दिखलाता है, जो हमारे जीवन को दूसरों के लिए प्रेममय उपहार बनाता है। संत पापा ने कहा,
Così la Vergine è modello della fede di questo popolo slovacco, una fede che si mette in cammino.
स्लोवाकी लोगों के लिए धन्य कुमारी मरियम विश्वास के आदर्श हैं, एक विश्वास जो यात्रा को अपने में सम्माहित करता है, जिसमें हम साधारण और सच्ची भक्ति ईश्वर की खोज हेतु निरंतर तीर्थ को पाते हैं। मरियम का विश्वास अपने में भविष्यवाणी भी है, जो हमारे लिए मानव इतिहास में ईश्वरीय उपस्थिति को व्यक्त करती है, जिसके फलस्वरूप हम ईश्वर की करुणामय हस्तक्षेप को विश्व में पाते, जो दीनहीनों और गिरे हुए लोगों को उठाते और शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा देते हैं। निष्कलंक कुमारी के रूप में मरियम हमारी बुलाहट का प्रतीक है, क्योंकि हम सभी उनकी तरह ही ईश्वर के प्रेम में शुद्ध और निर्मल होने हेतु बुलाए गए हैं।
मरिया la madre della compassione, la sua fede è compassionevole.
मरियम करुणा की माता है, उनका विश्वास अपने में करुणामय है। यीशु शारीरिक रूप में दुख सहते तो वही माता मरियम हृदय में दुख झेलती है। वह एक ममतामयी माता के रूप में हमारे आंसुओं को पोंछती हैं, हमें सांत्वना देती और यीशु के निश्चित विजय की ओर इंगित कराती है।
Maria dolorata sotto la croce semplicemente rimane. Questa è la prova della compassione.
क्रूस के नीचे खड़ा रहना हमारे लिए उनकी सच्ची करुणा का प्रमाण देता है। अपने प्रवचन के अंत में संत पापा ने कहा कि आप ईश्वर में विश्वास के इस उपहार को आश्चर्यजनक और कृतज्ञता के रूप में सदैव सुरक्षित रखें।
Maria Santissima, vi ottengo la grazia che la vostra fede rimanga sempre in cammino, che abbia il respiro della profezia e che sia una fede ricca di compassione.
माता मरियम हमारे लिए विश्वास की कृपा दें, जो हमारी करुणा और भविष्यवाणी की प्रेरिताई को गहराई प्रदान करती है।
संत पापा फ्रांसिस ने शस्तिन स्थित मरियम तीर्थस्थल पर समारोह क्रिस्त्या के साथ स्लोवाकिया में अपनी प्रेरित यात्रा का समापन किया। मिस्सा के तुरंत बाद वे ब्रातिस्लावा के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गए, जहाँ उनका विदाई समारोह सम्पन्न हुआ। विदाई समारोह के बाद वे करीब 2:45 बजे ब्रातिस्लावा के हवाई अड्डे से रोम वापसी के लिए प्रस्थान किए। अल इतालिया विमान से लगभग 2.25 घंटे की यात्रा के बाद संत पापा 2:30 बजे रोम के चंपिनो हवाई अड्डे से रोम पहुंचे। तत्पश्चात अपनी आदत के अनुसार रोम की संरक्षिका माता मरियम को प्रेरित यात्रा की सफलता हेतु अपना आभार प्रकट करने के बाद वे वैटिकन पहुंचे। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।